गाथा में आप सुन रहे हैं आर्या झा की कहानी अभिमान। सुहाग सेज पर बैठी माधवी आंखों में आनंद को समाये हुए अतीत की गलियों में खोई थी। उसे एक एक कर सब कुछ याद आ रहा था। बचपन से लेकर नवीं क्लास तक स्कूल में हमेशा फर्स्ट आने वाली माधवी बोर्ड परीक्षा में द्वितीय कैसे आ गई? उसने वापस क्रॉस लिस्ट चेक किया। सारे बच्चे उससे ही पूछ रहे थे कि आनंद कौन है, वो फर्स्ट और तुम सेकंड कैसे आ गईं? गुस्से में माधवी का गोरा चेहरा लाल पड़ गया था। बनारस के जाने माने उद्योगपति की इकलौती बेटी माधवी रूप गुण में अद्वितीय थी। उसने कभी किसी से हार नहीं मानी थी। तभी हॉस्टल से आता हुआ एक साधारण सा लड़का अपना रिजल्ट देखकर वापस हॉस्टल की ओर जाने लगा तो ऑफिस स्टाफ और शिक्षकगण बधाइयां देने लगे। तब सबने जाना कि यही स्कूल टॉपर आनंद कुमार है, जिसने 98.3% मार्क्स लाकर स्कूल ही नहीं बल्कि पूरे जिले में टॉप किया है। उसकी ओर हिकारत से देखती माधवी के गुस्से का ठिकाना न था। दो चार मार्क्स ज्यादा आ गए तो क्या हुआ, इसे तो मैं नेक्स्ट टाइम देख लूंगी। हार मानना माधवी का स्वभाव न था और जीतने की आदत आनंद को न थी। बनारस के नजदीक के ही एक गांव चंदौली के एक साधारण परिवार से आया हुआ एक अति साधारण लड़का था आनंद। न रूप में और न लिबास में कहीं से वो किसी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के योग्य नहीं था। उसके गांव के एक शिक्षक ने, जो कि उसके पिता के मित्र भी थे, छात्रवृत्ति के साथ इस स्कूल में पढ़ने की सुविधा मुहैया कराई थी और उसने बस पढ़ाई की। वैसे भी जिन बच्चों के पास दिखाने के लिए कुछ होता है वही बाहर घूमते हैं। वो तो किताबों में ही सिर घुसाए रहा और नतीजा इंटर बोर्ड परीक्षाओं में भी आनंद प्रथम व माधवी द्वितीय। स्कूल तो इंटर तक ही था, यहाँ से सब अलग निकल गए। माधवी ने यूनिवर्सिटी से बीकॉम और एमबीए किया और पिता का व्यवसाय संभालने लगी। इस दौरान कुछ 9 वर्ष निकल गए थे। साय की तरह पिता के साथ रहकर उनका कारोबार संभालती वो भी पिता की तरह ही एक सफल व्यवसायी बन चुकी थी। एक दिन अकस्मात ऑफिस में बात करते हुए पिता चक्कर खाकर गिर पड़े। वो तुरंत ही पिता को लेकर नजदीक के अस्पताल पहुंची। डॉक्टर के केबिन के बाहर बोर्ड था, आनंद कुमार MBBS MD DNB। डिग्रियां तो अच्छी हैं, ये पिताजी का सही इलाज कर सकेगा, ये सोचकर वो केबिन में घुसी तो वहां अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी आनंद को देखते ही वापस लौटने को हुई कि उसने रोक लिया। रुको माधवी, मुझे मरीज को देखने दो, एक डॉक्टर होने के नाते इलाज करना मेरा फर्ज है। मन मार कर ही उसने दिखाया, पर पिताजी का स्वास्थ्य सुधरने लगा था। उन्हें काम का एक्स्ट्रा प्रेशर लेने से मना किया गया था और कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सलाह दी गई। सारी जिम्मेदारियां माधवी पर आ गईं। रूप और तेज तो पहले से ही था, अब गंभीरता ने उसकी सुंदरता में अजब सा ठहराव ला दिया था। उसके इस अद्भुत रूप की तुलना जाह्नवी से की जा सकती है, जो कि गोमुख से निकली एक चंचल बालिका, हरिद्वार में इठलाती किशोरी और बनारस में आकर एक गंभीर नारी के रूप में सबके दुख दर्दों को दूर करने वाली पवित्रा पालनहार सी दिख रही थी। पिता के रिपोर्ट्स दिखाने उसे फिर से आनंद से मिलना होगा। उससे मिलते ही उससे वो सारी चुनौतियां याद आती। कैसे उसने उसकी जगह ले ली और तो और इतना बड़ा डॉक्टर बन गया। माधवी का अभिमान आहत हुआ था, पर उसने किसी से कुछ न कहा। गंभीरता का आवरण ओढ़ वो सारे रिपोर्ट्स के साथ आनंद के केबिन में खड़ी हो गई। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और हार्ट के पास कुछ ब्लॉकेज भी हैं। जल्दी ही ऑपरेशन करना होगा, आनंद ने कहा। तुमसे इलाज नहीं कराऊंगी, मेरे पापा का इलाज तुम ठीक से नहीं करोगे। पहली बात कि मैं सर्जन नहीं जो उनका ऑपरेशन करूं, दूसरी बात कि गुस्सा और बचपना छोड़ दो। इतना गुरूर जो सिर पर लेकर घूमती हो ना, अब हम टीनेजर्स नहीं, बी मैच्योर। इस हक से बकवास किया जा रहा है, कुछ भी हो जाए मेरे पापा का इलाज इस हॉस्पिटल में नहीं होगा। मन में ये ठान कर गुस्से से पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। उसने सबसे पता किया तो सभी ने डॉक्टर आनंद का ही नाम सुझाया और ऑपरेशन के लिए बढ़िया सुविधाएं भी उसी अस्पताल में मौजूद थीं। उफ, वो मुझे फिर से हरा रहा है और मैं हार रही हूँ। मैं अभिमान दिखाती रही और उसने अपने स्वाभिमान की रक्षा की। न जाने किस मिट्टी का बना है कि बुरा भी नहीं मानता। खैर, सबकी सलाह को मान वो पिता को उसी अस्पताल में ले जाएगी, ये विचार करती माधवी नींद में आ गई। मगर आनंद की आंखों में नींद ही नहीं थी। चांद को अपनी खिड़की से निहारता माधवी के ख्यालों में खोया था। वो उसे नवी कक्षा से जानता था। उसे पता था कि इतनी सुंदर और बड़े कुल की कन्या के ख्वाबों पर भी उसका कोई इख्तियार नहीं, पर जाने क्यों बात बात पर उसका तुनकना वो कभी भूल नहीं पाया। कल की सुबह कितनी खूबसूरत होने वाली है। माधवी उसके अस्पताल में अगले 3 दिनों तक रहने वाली है। ये सब सोचकर उसकी आंखों से नींद और दिल का चैन उड़ गया था। नियत समय पर माधवी पिता के साथ अस्पताल आ गई। प्री ऑपरेशनल चेकअप्स चल रहे थे। आनंद 2 राउंड लगा चुका था। पहली बार माधवी ने न उसे नीचा दिखाया और न ही तुनकी, पर आनंद तो उसकी इन्हीं अदाओं का दीवाना था। 2 कप कॉफी के साथ माधवी के पास आकर बैठ गया। ये औपचारिकता क्यों? तुमने डांटा नहीं तो मुझे लगा कि तुम्हें याद दिला दूं। तुम्हारा गुस्ताख क्लासमेट तुम्हारी डांट खाने के लिए हाजिर है। माधवी पिता की चिंता में गंभीर मुद्रा में बैठी थी, पर आनंद के इस नवीन बदलाव को देखकर उसे हंसी आ गई। कब तक मेरी डांट सुनोगे? सारी उम्र। किस हक से? दोस्त समझ लो। माँ ने सब सुन लिया था और एक अरसे बाद बेटी को हंसती देख मन ही मन आनंदित थी। उन्हें अपनी बेटी के लिए आनंद जैसा ही दामाद चाहिए था। बस पति स्वस्थ घर लौटे तो इसी लगन में बेटी के हाथ पीले कर दूंगी। इन्हीं विचारों में खोई थी कि माधवी ने बताया, ऑपरेशन सफल रहा माँ? थोड़ी देर में पिताजी को होश भी आ जाएगा। माधवी पहली बार नतमस्तक थी। आनंद ने समय पर पिता का इलाज कर उनके प्राणों की रक्षा की थी। 2 दिन बाद दिवाली थी। माँ ने मन ही मन आनंद को जमाता मान लिया था। उन्होंने दिवाली के दिन माता पिता के साथ आने का निमंत्रण भी दे डाला और आनंद तो जैसे इसी ताक में था। दिवाली की रात दियों और पटाखों से जब सारा जहां रोशन था, तब माधवी और आनंद को एक बंधन में बांधने की तैयारियां चल रही थी। दोनों शर्मा कर बाहर आ गए। माधवी आनंद को पाकर गर्व महसूस कर रही थी और आनंद ने तो जैसे माधवी को जीतकर जग जीत लिया। 3-4 दिन बाद का ही मुहूर्त निकला। विवाह संपन्न हो गया। अब दोनों एक दूसरे के हो चुके थे। तभी दरवाजे पर दस्तक से माधवी की तंद्रा त्रुटी और वो वर्तमान में लौट आई। मैं आई कमिन मैडम। कौन? ख्यालों में खोई माधवी चौंकी। तुम्हारा पति? आनंद दुस्साहसी प्रेमी के समान उसकी तरफ खींचा चला आ रहा था। उसकी मादक अदा पर माधवी मुस्कुराने लगी। पति ने साधिकार घूंघट उठाना चाहा तो माधवी ने अपने हाथ आगे कर दिए। पहले मुंह दिखाई निकालिए जनाब। प्रिय, मुंह दिखाई में मैं तुम्हें अपना अभिमान देता हूं। तुम जिस मान अभिमान के साथ मुझसे झगड़ती रही, बस वैसी ही बनी रहो। एक स्वाभिमानी और ओझमयी माधवी, तुम बोलोगी और मैं सुनूंगा। मैं यानी वही गंवार आनंद और तुम यानी वही टॉपर माधवी। आनंद की बातों की गहराई ने माधवी को खामोश कर दिया। इतने सुंदर व सुलझे विचारों वाले सहचर को पाकर स्वयं को धन्य महसूस कर रही थी। उसकी हार उसे इतना खूबसूरत उपहार देगी, ये तो सोचा ही न था। वो हार कर जीत गई थी। गाथा में आप सुन रहे थे आर्या झा की कहानी अभिमान। गाथा में आपके लिए इस कहानी को प्रस्तुत किया शेफाली कपूर ने।